नमस्ते। आज हम श्री राम की जीवनी पर कुछ चर्चा करेंगे। अभी अभी राम नवमी हम सब ने सेलिब्रेट किया। राम नवमी राम का जन्मदिन है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि पर हम श्री राम के जन्म दिवस को उत्सव के रूप में मनाते हैं। श्री राम की यात्रा, जीवन यात्रा धर्म की यात्रा है। धर्म का अर्थ जीवन में जो आदर्श तत्व हैं, ऐसे धारक तत्व जिनके आधार पर संसार के जीव जगत में हमारा आसपास इकोसिस्टम, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, सस्टेन करते हैं। सत्य, अहिंसा, अक्रोध, क्षमा आदि आदि, इन सबको जीवन में उतारने के लिए हम सब सीखते हैं। हमारे शास्त्र हमें उपदेश करते हैं, पर इन सबको ना पालने के लिए हमारे पास सैकड़ों एक्सक्यूजेस होते हैं, क्यों हम इनको पालन ना करें। हम शादीशुदा हैं, हमारी घर गृहस्थी है, हमारे साथ किसी ने ऐसा किया, सोसाइटी ऐसी नहीं है, हमारे हजारों कंपल्शंस हैं, एक्सक्यूजेस हैं। ये समझाने के लिए खुद को और दूसरों को बाद में कि हम क्यों अच्छा नहीं बन सकते, बुरा हम क्यों करते हैं। राम की जीवनी इसी परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। सारे नेगेटिव इकोसिस्टम होने के बावजूद भी, सब तरह के कष्ट झेलने के लिए मजबूर होने पर भी, एक व्यक्ति अपने जीवन को धर्म के अनुसार जीने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी हालत में उस धर्म के मार्ग से वो हटना नहीं चाहता है। अगर ये हमें जानना है तो राम का चरित्र सबसे बड़ा उपदेश माध्यम बनते हैं। राम की चरित्र जानने से पहले जानने की कोशिश करते हैं कि राम का चरित्र जहां से हमारे तक पहुंचा, महर्षि वाल्मीकि के रचित रामायण। महर्षि वाल्मीकि स्नान के लिए सरजू नदी के किनारे जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक पेड़ के पास दो क्रौंच पक्षी, अंग्रेजी में क्रेन्स कहते हैं, एक दूसरे से प्यार में मग्न थे और एक शिकारी बहेलिया अपने बाणों से एक क्रौंच को उनमें से शर्ष मारकर गिरा दिया। वाल्मीकि परेशान हो गए। ऋषि की आत्मा है, हृदय है, छोटे छोटे दूसरों के कष्टों में भी पिघल जाता है। वो इतना ज्यादा व्यथित हुए, उनके मन से उस शिकारी के प्रति बुरे शब्द निकले शाप के रूप में, और उन्होंने उससे कहा, मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती हि समाः यत्क्रौञ्च मिथुनादेक मवधिः काम मोहितम्। शिकारी, तुम जीवन भर खुश नहीं हो सकते हो, तुम्हारे मन में कभी स्थिरता या शांति नहीं आ सकती, क्योंकि तुमने एक ऐसे पक्षी को मारा जो काम भावना से, अपने साथी के प्रति प्रेम भाव से मग्न था। वाल्मीकि ये बोल करके तो चले गए, पर अचानक उनके मन में विचार आया। जिस तरह की भाषा में उन्होंने बोला, जिस तरह का शब्द चयन हुआ और उस शब्द को प्रकाश करने में जो एक तरह का लय बना, जो एक रिदम था, उस रिदम को उन्होंने रियलाइज किया, उनके साथियों ने उनको रियलाइज कराया कि ये जो आपने शाप दिया, ये तो क्रोध कम शोक कम, इसमें माधुर्य झलक रहा था, आप में उस कवित्व की प्रतिभा है, कवित्व की बीज है, और आप उस कवित्व की प्रतिभा का प्रयोग करें और कुछ लिखें। कवि लिखे तो क्या लिखे, तो काव्य लिखेगा। वाल्मीकि उसके बाद बहुत दिनों तक इस बात को सोचा, जब हमारे आपके अंदर भी कोई प्रतिभा हो छिपी हुई, अचानक मौका न मिलता है तो वो प्रकट में नहीं आती है, और कभी अचानक वो ऐसी मौका आए और वो प्रतिभा सामने आए तो मन करता है उस प्रतिभा का प्रयोग करे। वाल्मीकि के सामने समस्या थी, तो वो ऐसे कवि तो थे नहीं कि किसी भी व्यक्ति की सोसाइटी की स्तुति में लग जाएं, जैसे कि आजकल बहुत सारे हमारे कवि लोग हमेशा से रहे हैं, कुछ कवि लोग चाटुकारिता में, दूसरों के अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा में कवि बन जाते हैं। वाल्मीकि को ऐसे कैरेक्टर चाहिए था जो उनके काव्य का मुख्य नायक हो, और उसके लिए उन्होंने खोजबीन शुरू की, कोई ऐसी कैरेक्टर है क्या जिसके ऊपर मैं कुछ लिख सकूं। अचानक एक दिन नारद ऋषि से उनकी भेंट होती है। महर्षि वाल्मीकि उनका सत्कार करने के बाद पूछते हैं, कोन्वस्मिन् साम्प्रतम् लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः। नारद जी, आप तो सब जगह घूमते फिरते रहते हैं, आप परिव्राजक हैं, ऐसा कोई चरित्र, ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिला है जो इसी संसार में हो, वर्तमान में हो? मैं, मुझे कोई इतिहास का पुरुष नहीं चाहिए, व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जो अभी हो, मनुष्य हो, और उसमें वो सारे गुण हो, वीर हो, धर्म को समझता हो, अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या मानना चाहिए क्या नहीं मानना चाहिए, ये जो डिस्क्रिमिनेटिव पावर जिससे धर्म का व्यवहार होता है, उस धर्म को वो समझता हो, कृतज्ञ हो, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड उसमें भर भर के हो, उसके वाक्यों में सत्यता हो, अपने संकल्प में वो दृढ़ हो, और कैसा? वाल्मीकि बोलते हैं, चारित्रेण चको युक्त सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कसमर्थश्च कश्चैकः प्रियदर्शनः। देखने में अच्छा हो, शरीर से हृष्ट पृष्ट हो, चरित्र शुद्ध हो, सभी प्राणियों के प्रति हित भावना, अच्छी भावना, प्रेम भावना रखता हो, ज्ञानी हो, शास्त्रों को समझने वाला हो, समर्थ हो, कैपेबल हो, कुछ करने लिखने के लिए, कुछ करने के लिए योग्य हो, और कैसा? धर्मज्ञ सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वश्य समाधिवान्। धर्म को जानने वाला, सत्य पर टिके रहने वाला, प्रजाओं के कल्याण में हमेशा लगे रहने वाला, यशस्वी हो, फेमस हो, समस्त ज्ञानों से पूर्ण हो, शरीर मन बुद्धि से पवित्र हो, इंद्रियों को कंट्रोल में रखता हो, मन को कंट्रोल में रखता हो, समाधिवान फोकस्ड हो, मेडिटेटेड माइंड हो, ईश्वर भक्ति से पूर्ण हो, सर्वदा विगत सद्भिः समुद्र इव सिंधुभिः आर्य सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। सभी ज्ञानी विद्वानों के साथ मिलता जुलता हो, गुड एसोसिएशन में रहता हो, जिसे हम आम भाषा में सत्संग या सत्संगति कहते हैं। आर्य हो, श्रेष्ठ हो, विचारों में व्यवहार में श्रेष्ठता हो, सबके प्रति समदृष्टि रखता हो, ऐसा कोई व्यक्ति आपके नजर में है जो जिसको मैं अप इतने दिनों से ढूंढता रहता हूं? नारद ने कहा, आपने मुझे बड़े डिलेमा में डाल दिया। इतने सारे अच्छे गुण, सारे गुणों को किसी ना किसी में देखा जा सकता है, पर सारे गुण एक व्यक्ति में मिले, ये तो असंभव है, मुश्किल है, असंभव नहीं, रेयर है। नारद कहते हैं वाल्मीकि रामायण के बालकांड में, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। पर तब भी मुझे टाइम दीजिए सोचने को, अपने मेमोरी को मैं खंगालू। खंगाल करके मन नारद ने बोला, एक व्यक्ति है, यद्यपि ये सारे गुण एक जगह मिलना बड़ा रेयर है, एक व्यक्ति मेरे नजर में आता है। वाल्मीकि ने पूछा, कौन है? तो नारद बताते हैं, इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्य द्वितिमान धृतिमान वशी। एक अयोध्या में इक्ष्वाकु खानदान में पैदा हुआ राम नाम का एक राजा है, अभी है अयोध्या में, अभी वो राजा है, बड़ा नियतात्मा है, इंद्रियों को मन को कंट्रोल में रखने वाला, महावीर है, चमक धमक से भरा हुआ है, धैर्यशील है, और आपने जो बताया सारे गुण उनमें आपको जरूर मिलेगा। वाल्मीकि ने नारद जी के इस प्रश्न को प्रश्न के उत्तर को जान करके बड़े प्रसन्न हुए। उनकी इतिहास लिखने की काव्य शैली में उनको कोई चरित्र मिला था, अब उनके बारे में और जानना था। अच्छी तरह वाल्मीकि ने अपने प्रयास से जाना, अयोध्या में अभी राजा राम शासन कर रहे हैं, उससे पहले उनकी पूरा इतिहास उन्होंने खंगाला, पता किया। उनको लगा अब इन पर काव्य लिखा जा सकता है। देवियों सज्जनों, रामायण का पढ़ना या रामायण को जानना, रामायण मतलब राम की जीवन यात्रा, राम की कथा, हमें जो सिखाने के लिए देता है वो है कि जीवन में जो एथिक्स हैं, वैल्यूज हैं, वो सिर्फ कोई खोखले नहीं होते हैं कि क्लासरूम में पढ़ने के लिए, दूसरों को बताने के लिए, ये जीवन में उतारने के लिए होते हैं। जब भी हमें झूठे एक्सक्यूजेस ढूंढना पड़े अच्छाइयों को ना करने के लिए, बुराइयों का साथ देने के लिए, मर्यादाओं को उल्लंघन करने के लिए, तो रामायण वहां हमें एक डेमोन्स्ट्रेटिव एजुकेशन के थ्रू बताता है कि जीवन में ऐसा कोई एक्सक्यूजेस नहीं है जहां बता सकते हो आपने मर्यादाएं क्यों तोड़ी, लिमिटेशंस क्यों तोड़े, धर्म का क्यों अवहेलना की। इसीलिए रामायण वो जो उत्कृष्ट, जो नोबलेस्ट लेशंस हैं, उसका मानो एक एम्बॉडीड फॉर्म में आपको रामायण में मिलेगा, जहां धर्म अर्थात जीवन में वो अच्छे व्यवहार, मानसिक कायिक बौद्धिक व्यवहार जिसमें शुद्धता हो, जिसमें परिमार्जक परिमार्जन हो, ये इसका जो सुप्रीम इंपोर्टेंस है ये आपको रामायण में देखने को मिलेगा। धर्म है क्या? जीवन में जो दिव्यता है, छुपी हुई दिव्यता, उसको अनफोल्ड करने की जो प्रोसेस है वो धर्म है, जो हम व्यवहार के द्वारा अपने आचरण से व्यवहार से हम कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी क्या है कि उसके लिए डेफिनाइट कन्विक्शन हो। कन्विक्शन किस बात की? कि मोरल प्रिंसिपल्स की लाइफ में सुप्रीमेसी है, जो वैल्यूज है, जो आइडियल्स है, वो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले हैं। हिपोक्रिटिकली सिर्फ पब्लिक को सोसाइटी को दिखाने के लिए नहीं, इवन अंधेरे में भी अकेले में रहने पर भी वही वैल्यूज, वही मोरल प्रिंसिपल्स, वही आइडियल्स हमारे अंदर व्यवहार में झलकने चाहिए। जब इस लेवल तक पहुंच जाए तो समझ लें कि हम धार्मिक हैं। राम का जीवन उसी मैसेज को देने के लिए है। उनका पूरा जीवन चरित्र एक खुला किताब है, जिसमें उनके हर जीवन के छोटी छोटी घटनाओं से हम प्रेरणा ले सकते हैं जीवन को कैसे जिए। हमारे शास्त्र हमें अच्छा बनने के लिए उपदेश करते हैं, और अच्छा बनने के लिए जब हमारे लाइफ में कोई डिलेमा हो, हमें समझ में नहीं आता हो, थ्रेशोल्ड पर हो, दरवाजे पर हो कि मैं इधर जाऊं, आचरण करूं न करूं, झूठ बोलूं सच बोलूं, या अहिंसा का पालन करूं, सैकड़ों ऐसे समस्याएं आती हैं जीवन में जहां हम समझ में नहीं आता है किसको मैं प्रायोरिटी दूं। तो हमारे शास्त्र कहते हैं चार तरह के चीजों से आप सहारा ले सकते हो। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः। श्रुतियों का सहारा लो, वेद आदि शास्त्रों में जो लिखा है उनके उपदेशों को समझो, ठीक ठीक समझो, ये अंडरलाइनिंग है, ठीक ठीक समझो, और उसके हिसाब से अपने जीवन को कैसे जीना है उसके आधार पर करो। पर अगर किसी कारण श्रुति तुम्हारे लिए हेल्पफुल नहीं हो सकते, तुम्हारे लिए वो एक्सेसिबल नहीं है, या समझ में नहीं आता है, या थोड़ा ज्यादा बोझिले लगते हैं, ज्यादा सुपरफिशियल लगते हैं किसी भी कारण से, तो तुम्हारे लिए सेकेंड ऑप्शन है, थोड़ा और इजी है, स्मृति शास्त्रों का सहारा लो। स्मृति धर्म शास्त्र हैं, जिनमें धर्म और अधर्म का ज्यादा सरल व्यवहार में समझाया गया है, कंटेम्परेरी वे में समझाया गया है। प्राचीन काल में गौतम, याज्ञवल्क्य, मनु आदि अनेक धर्मशास्त्र और स्मृति शास्त्र मिलते हैं, और शास्त्र हमेशा समय के अनुसार अपडेट होते रहते हैं। धर्मशास्त्र अगर आप आज की तारीख में पूछें कौन सा धर्मशास्त्र है, तो किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां के जो रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, ये सब धर्मशास्त्र हैं, आधुनिक धर्मशास्त्र हैं। उन धर्मशास्त्रों के आधार पर अपना जीवन को जीने का या लाइफ में कुछ करना न करना, उससे बेस पर डिसीशन ले सकते हैं। अगर उसमें भी आपको समस्या हो तो सदाचार, जो सतलोक हैं, अच्छे लोग हैं, सज्जन हैं, महापुरुष हैं, महाज्ञानी हैं, महात्मा हैं, भगवत पद को प्राप्त हुए हैं, भगवत मीन्स ज्ञान वैराग्य आदि छह प्रकार के ऐश्वर्य प्रॉस्पेरिटी में से किसी एक या समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त कर चुके हो, ऐसे किसी महाजन के जीवन को पढ़ो समझो उसी के हिसाब से आचरण करो। जैसे कहा महाजनो ये न गत सपन्ता, तैतरीय उपनिषद कहता है कि जब भी लाइफ में ऐसी समस्या आए अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वृत्त विचिकित्सा वास्यात् ये तत्र ब्राह्मणः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्म कामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तिरन् तथा तत्र वर्ते थाः। तैतिरीय उपनिषद प्रथम वल्ली का ये मंत्र भाग है। जब भी तुम्हारे कर्मों में कोई समस्या हो, समझ में कोई डाउट हो, जॉब में कुछ डिलेमा हो, तो जो भी वहां ब्राह्मण है, ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, जो तत्वों को, रियलिटी को एज इट इज जानते हैं, साइंस में डाउट हो तो साइंस में जो साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिक्स में डाउट हो जो पॉलिटिकल मैच्योर आप्त पुरुष हैं, किसी भी फील्ड में जो आप्त ज्ञानी है वो ब्राह्मण है। जिस भी मामले में आपको जानना हो उस विषय का जो भी विशेषज्ञ है या जिसने अपने जीवन में उसको उतारा है, ऐसे किसी महात्मा सज्जन के जीवन चरित्र को देखो, जो सम्मर्षी है, जो अच्छी तरह सोच विचार करके काम करने वाले हैं, युक्त हैं, योगी हैं, जिनके मन इंद्रियां सब नियंत्रित हैं, लोभ रहित हैं, जीवन में धर्म कुट कुट के भरा पड़ा है, ऐसे व्यक्ति जैसा व्यवहार करते रहे हैं तुम भी वैसा व्यवहार करो। राम का चरित्र यहीं पर, वो जो तैतरीय उपनिषद में कहा ब्राह्मणः सम्मर्षिणः युक्ता युक्ताः अलोक्षा धर्म कामः, गीता में जिसको महाजन कहा या कहा यद्यदाचरति श्रेष्ठ स्तत्तदेवे तरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, वो जो श्रेष्ठ जन है गीता की भाषा में, उस श्रेष्ठ जनों को अनुसरण करने में करने से ही जीवन के जो संदेह है, डिलेमा है, वो दूर हो सकता है। राम उस गीता के श्रेष्ठ पुरुष, तैतरीय उपनिषद का वो ब्राह्मण सम्मर्षि युक्त अयुक्त पुरुष है, जिनके जीवन को जानने से, पढ़ने से, समझने से हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। इसीलिए वाल्मीकि खुद अपने मुंह से लिखते हैं रामायण की अरण्य कांड में, रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। मानो धर्म अपने आप को पर्सोनिफाई कर चुका है, वो राम नहीं है। राम का हर व्यवहार इतना धर्मपूर्ण था, इतना मर्यादामय था कि मानो धर्म ही खुद शरीर धारण किया हुआ हो। धर्म इटसेल्फ इज पर्सोनिफाइड आज रामचंद्र, इसीलिए पुरुषोत्तम कहलाते हैं, द आइडियल पर्सन। सभी पुरुषों में, मनुष्यों में, पुरुष का अर्थ मनुष्य है, जीव है, प्राणी है, वैसे तो दर्शन शास्त्रों में पुरुष का अर्थ आत्मा है। सामान्य भाषा में मनुष्यों में श्रेष्ठ है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में कोई समस्याएं नहीं आई, ऐसा नहीं कि उनके जीवन में कष्ट नहीं आए। और कष्ट क्या हो सकता है कि उनको एक राज परिवार में जन्म हुआ, कल जो राजा बनने जाने वाले थे और कल सुबह वो 14 साल के वनवास के लिए जाते हैं। वनवास शब्द सुनने में हो सकता है आपको कुछ हल्का सा वर्ड लगे, आप लोग आजकल जिस तरह की परिस्थितियां है उसमें आप सब क्वारंटीन शब्द बार बार सुनते हैं, अपने आप को अपने घर में अपने रूम में अकेले रखना, लॉकडाउन शब्द सुनते हैं, आइसोलेशन शब्द सुनते हैं, अपने आप को अपने घर में बंद रखते हैं, तब भी बहुत सारे लोग बेचैन होते हैं, रिवोल्ट करते हैं, परेशान हो जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि आप कोई अकेले पड़े हुए हो, आप अपने घर में हो, अपने परिवार के साथ हो, खाने पीने की सब सुविधाएं रखे हो अपने पास, एंटरटेनमेंट के लिए आपके घर में टीवी, रेडियो, फोन, इंटरनेट, बहुत अलग अलग घरों में अलग अलग एंटरटेनमेंट की सुविधाएं हैं। आप अपने कपड़े पहन सकते हो, अपनी चीजें खा सकते हो, कोई रुकावट नहीं है, उसके बावजूद भी हम परेशान हो जाते हैं। राम अयोध्या का भविष्य राजा बनने वाला 14 साल तक बन जाता है, केवल जंगल में रहने के लिए नहीं, नॉर्मल ह्यूमन बींग के, एक सामान्य मानव का जो खान पान रहन सहन कपड़े वो पहन नहीं सकता, वो पके हुए खाना नहीं खा सकता, वो आम मनुष्यों के तरह कपड़े नहीं पहन सकता, उसको जंगल में पेड़ों के छालों से बने हुए, पत्तों से बने हुए कपड़े पहनना पड़ेगा, फल मूल से, कच्चे फल मूल से गुजारा करना पड़ेगा। वो आम मनुष्यों की तरह पक्का घर बना के भी जंगल में नहीं रह सकता, उसको झोपड़ी में पत्तों के घासों से बने हुए झोपड़ी में रहना पड़ेगा, और 21 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 6 महीने नहीं, 14 साल तक रहना पड़ेगा। उसके बावजूद भी वो चाहते तो मना कर सकते थे, इन्होंने तो किसी को कमिट नहीं किया था। धर्म के पालन करने में जिस भी हद तक परेशानियां आए उसको निभाना उनके लिए कर्तव्य था। इसीलिए राम को कहा रामो विग्रहवान नरः, जो उन्होंने बोला उसको निभाया। जब कैकेयी के साथ उनकी बातचीत होती है, दशरथ बेहोश पड़े हैं और राम पहुंच करके कैकेयी से पूछते हैं, बताओ क्या समस्या है माताजी, क्यों मेरे पिताजी बेहोश पड़े हैं, आप क्यों गुस्से में हो, शोक भवन में क्यों बैठी हो, इतना दुख भरा तनाव से भरा हुआ माहौल क्यों है। कैकेयी बोलती है, नहीं तुम्हें बता के कोई फायदा नहीं, तुम भी नहीं करोगे, तुम्हारे पिताजी बोल के मुकर गए। तो राम का बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, बड़ा छोटा सा सेंटेंस है जो राम को कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए बहुत बड़ी बात है। कहते रामो द्विर नभाषते, माता जी खुल के बोलिए, राम एक चीज को दोबारा नहीं बोलता है, अगर मैंने बोल दिया हां तो कभी भी ना नहीं बोलने वाला, अगर ना बोला तो हां नहीं बोलूंगा, अगर मैंने कमिट किया तो दोबारा कभी उसे मुकरूंगा नहीं, भरोसा रखो। ये राम का चरित्र था। देवियों सज्जनों, राम जीवन में मर्यादाओं को, धर्म के पालन के अलावा भी जहां भी रिलेशनशिप में जहां जैसी जरूरत है उसको निभाने के लिए भी वो हमेशा तत्पर रहते थे। और अगर राम के चरित्र का और एक झलक आपको जानना हो वो है, राम यद्यपि गृहस्थ थे, घर गृहस्थी वाले थे, राजपुत्र थे, राजा के घर में रहने वाले, आज की भाषा में कहें बहुत बड़े लीडर थे, लीडर के घर में पैदा होने वाले, मतलब बिल्कुल सांसारिक जीवन में शादीशुदा थे, रॉयल फैमिली का जो सुख सुविधाओं से भरे हुए व्यक्ति थे, पर अंदर से बड़े योगी, ज्ञानी, भक्त का जेन्युइन, मैं उन योगी सन्यासी ज्ञानी भक्त की बात नहीं करता हूं, जो इसमें नहीं कर रहा हूं, जो हिपोक्रिटिकली करते हैं, जो जेन्युइनली अंदर से योगी हैं। गीता में जब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं योगी का डेफिनेशन क्या है, भक्त का डेफिनेशन क्या है, ज्ञानी का डेफिनेशन क्या है। तो अलग अलग चैप्टर में वो अलग अलग कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्त, ये भक्त सबकी डिस्क्रिप्शन बताते हैं, पर अगर आप ठीक से पढ़े हर चैप्टर में, लैंग्वेज अलग हो सकता है, वर्ड्स अलग हो सकते हैं, मीनिंग सबका सेम है। क्या जैसे गीता में वो बोलते हैं स्थित प्रज्ञा योगी, जिसकी प्रज्ञा या बुद्धि ठहर गई हो, स्थिर हो गई हो, वो बताते हैं दुखे स्वन उद्विग्न मना सुखे सुविगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरोच्यते। जो किसी भी परिस्थिति में, जिसके माइंड में किसी तरह का कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता, उतार चढ़ा, हम तो छोटी छोटी बातों में दिल हमारा धड़कता रहता है, खुशी हुई नहीं उछलने लगते हैं, दुख हुआ नहीं टूटने लगते हैं, लोग तो सुइसाइड भी कर जाते हैं। और वो कौन है जो रियल योगी है, सन्यासी है, ज्ञानी है, भक्त है, जो सुख में ना उछले, दुख में भी ना टूटे, अच्छा हो बुरा हो, ठंड हो गर्मी हो, निंदा हो प्रशंसा हो, सोने की इंट हो या मिट्टी का इंट हो, हर परिस्थिति में एक जैसा रहता हो, फिजिकली नहीं मेंटली, कूल काम शांत, वो तभी होगा। आप दुख में तभी नहीं टूटेंगे अगर आप सुख में नहीं उछलते, हर परिस्थिति में एक जैसा रहता हो। राम के चरित्र को देखें, सुमंत अयोध्या में रथ चलाने वाला सारथी है, चेरिएटर है, और राजसभा का एक बड़ा सम्माननीय, बड़ा रेस्पेक्टेबल मेंबर है दशरथ की राजसभा में। सुमंत के द्वारा वाल्मीकि लिखते हैं, सुमंत के मुंह से, और लिखते हैं आहुतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च नमया लक्षितस्तस्य स्वल्पोप्याकार विभ्रमः। सुमंत कहता है जब राम का युवराज अभिषेक होने वाला था, मैं ही गया था उनको सूचना देने, मैंने बताया था रात को तैयार रहिएगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह आपका अभिषेक होने वाला है, कोरोनेशन, आप युवराज बनेंगे, क्राउन प्रिंस बनेंगे, उसके लिए जो भी सेलिब्रेशन होता है उसको अभिषेक कहते हैं, तैयार रहिएगा। तब भी मैंने राम के मुंह में वो एक्सप्रेशन देखा था, और मैं ही वो व्यक्ति हूं जब कैकेयी के शोक भवन में दशरथ मूर्छा में बार बार जाते थे, बेहोश होते थे, क्योंकि वो कैसे राम को सजा दें अपनी गलती का, कमिटमेंट तो मेरी थी कैकेयी के प्रति, 3 वर दूंगा, पर कैकेयी के वरों में जो भी मांगा वो मेरे लिए नहीं, वो तो राम को झेलना है, उनमें वो हिम्मत नहीं था, वो टूट रहे थे, उनके अंदर ब्रेकडाउन बार बार हो रहा था, वो गिर रहे थे, मूर्छा में आते थे वापस आते थे, कैकेयी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी, मुझे अपने 3 वर चाहिए, राम तक मैसेज लेकर के सुमंत ही गया था। सुमंत राम को बुला करके राजमहल में आते हैं, कैकेयी के कोप भवन में, सुमंत वहां भी खड़ा है, राम और कैकेयी के बातचीत में कैकेयी सुनाती है ये 3 शर्त हैं, तुम्हें कल राजा नहीं बनना है, मेरा बेटा भरत बनेगा, ओके, तुम्हें इस राजभवन में भी नहीं रहना है, ओके, जंगल में जाके रहना पड़ेगा, ठीक है, 14 साल तक रहना होगा, इस बीच में कभी भी इस राज्य को छोड़ो, दुनिया में किसी भी जनपद में नहीं जाओगे, जनपद मतलब जहां लोगों की बस्ती हो, ठीक है, और किसी भी सामान्य मनुष्यों के तरह तुम्हारा जीवन यात्रा नहीं होगी। ना सामान्य मनुष्यों की तरह कपड़े पहन सकते हो, ना खा सकते हो, ना कुछ भी कर सकते हो। जंगल में पेड़ों के छाल, पेड़ों के जो भी जंगली चीजें, उन्हीं से वस्त्र पहनोगे, उन्हीं चीजों को फल मूल खाओगे, कच्चा पका तो नहीं। सुमंत ने बोला, तब भी मैंने राम को देखा था, उनकी शकल में वही एक्सप्रेशन था जो एक्सप्रेशन मैंने युवराज बनने की घोषणा के समय देखा था, हमेशा एक जैसा फेशियल एक्सप्रेशन, मुंह की आकृति। सुमंत कहते हैं, नवनम गंतुकामस्य त्यजतश्च वसुंधराम सर्वलोकातिगस्यैव लक्ष्यते चित्तविक्रिया। मैंने उनके मन की जो हलचल, जो मुंह पर आ जाता है, उनमें मैंने कोई विक्रिया, कोई बदलाव नहीं देखा। आप कभी भी राम को धर्म के पालन के लिए, कष्ट हो, अच्छा हो, बुरा हो, किसी तरह का ना सुख या दुख में नहीं देखा जा सकता था। ये राम का चरित्र है। वो कोई योगी ऋषि भगवा पहने हुए आश्रम में रह करके तपस्या करने वाले नहीं थे। राजभवन में रहते हुए भी राम का चरित्र किसी योगी से, ऋषि से, भक्त से कम नहीं था। ऐसा राम का चरित्र था। और राम कैसे थे? उनके जीवन में जो मर्यादाएं हैं वो उससे हमेशा बंधा रहते थे। रिलेशनशिप को निभाना जानते थे। हम तो छोटी छोटी चीजों में मां बाप पर भी बरस पड़ते हैं। बच्चे मां बाप से, मां बाप बच्चों से, पति पत्नी के रिश्ते में, भाई 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 बहनों के रिश्तों में स्वार्थ इतना ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। कल तक जिससे हम आई लव यू कहते थे, आज आई हेट यू करते रहते हैं। रिश्तों का कदर हम अपने स्वार्थ से दिखते हैं। रिश्तों में हम सिर्फ दूसरों से एक्सपेक्ट करना ही जानते हैं और इसी के कारण रिश्तों में दरार पड़ते हैं। जब भी रिश्तों में दरार पड़े, राम की चरित्र मदद करता है समझने के लिए रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए। रिलेशनशिप के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ बाउंड्रीज होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ आइडियल्स होते हैं, उनको फॉलो करना कितना जरूरी है। रिलेशनशिप जरूरी क्यों है? नेचुरली ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल, सोसाइटी में रहना है तो उसको इन चीजों की जरूरत है, सुखी रहना है। तो राम ने जीवन में जो भी चरित्र निभाया, बेटे के रूप में, संतान के रूप में, मां बाप के प्रति कर्तव्य, उसके लिए जंगल जाना पड़ा तो गए हंसते हंसते, पति के रूप में सीता के प्रति जो उनका कर्तव्य। उस सज्जनों, एक चीज ध्यान रखिएगा, रामायण में सीता का जो चरित्र है बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर है, वो सॉफ्ट है, सुलझी हुई है, मैच्योर्ड है, एजुकेटेड है, ज्ञानी है, इसलिए उनके सीता के चरित्र में आपको एग्रेसिवनेस नहीं दिखेगा। पर सॉफ्ट होने का अर्थ नहीं है कि आप स्ट्रांग नहीं है। जो सीता का डिसीशन होता है वो हमेशा उसमें अड़ी रहती है। राम उसको रेस्पेक्ट करते हैं। राम को जंगल जाना था, सीता अड़ी, मुझे भी आपके साथ जाना है, मैं यहां रहकर क्या करूं, मैं आपके साथ रहूंगा जैसा भी होगा। राम समझा रहे हैं, कमिटमेंट आपकी नहीं है, मेरी है, मेरे पिताजी की तरफ से। आप फ्री हो, आप यहां रहो, आप जंगल में कैसे रहोगे? इस तरह के कंडीशन के साथ आप नहीं रह सकती हो, इस तरह के कपड़े पहनना, खान पान करना, जंगली जानवरों के बीच में रहना मुश्किल है। सीता अड़ी, राम को मानना पड़ा। सीता अड़ी के मुझे ये जो गोल्डन डियर है, सोने का हिरण है, वो मुझे चाहिए। राम को पता था, समझदार है, ज्ञानी है, कि गोल्डन डियर कुछ होता नहीं है, सोने का कुछ हिरण नहीं होता। लक्ष्मण ने भी समझाया था, राम ने भी समझा, नहीं हुआ, मानना पड़ा। उनको पता था कि ये सोने का हिरण नहीं है, तब भी वो सीता के कहने पर पीछे गए। अपनी पति धर्म को निभाने की, पत्नी की भावनाओं को रेस्पेक्ट करने की, भ्रातृधर्म, अपने भाइयों के प्रति जो उनका स्नेह है, प्रेम है। भरत को पता चला कि राम वनवास में जा चुके हैं उनकी माताजी के कारण। भरत जब राजभवन में ये इंसिडेंट हुआ तो भरत अपने मामा के घर था। भरत को बुलाया गया, पहुंचा, पता चला मेरी माँ ने ये सब कांड किया है। उसको बहुत गुस्सा आया अपनी माँ के ऊपर, बहुत भला बुरा कहा, माँ से बात नहीं करना, दूर रखा और खुद बहुत दुखी रहा। सोचा कि मैं खुद जाऊंगा, राम को बुलाकर लाऊंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। राम बड़ा भाई है, योग्य है, हर तरह से वो क्वालिफाई करते हैं राजा बनने के लिए, मैं नहीं बनूंगा। भरत चल पड़ते हैं राम को मिलने के लिए और उनके पीछे पीछे सभी माताएं, अयोध्यावासी मंत्री चल पड़ते। राम लक्ष्मण अयोध्या के सीमा के, अभी तक सीमा के पास हैं। लक्ष्मण दूर से देखता है, धूल उड़ रहे हैं, इतनी सारी सेनाएं आ रही हैं। उसको लगा हो सकता है भरत बदमाश है, मारने के लिए आ रहा होगा, कि एक बार मार दो कदम मैं राजा बनूंगा। लक्ष्मण राम को कहते हैं कि देखो ये कितना बदमाश है, अपनी माँ की तरह है, इसको यहीं से मार डालते हैं। राम मुस्कुरा कर बोले, पेशेंस रखो, धैर्य रखो, देखो क्या हो रहा है। भरत आया, दूर से राम और भरत एक दूसरे को देखते हैं, ऐसे दौड़ते हैं, ऐसे दौड़ते हैं, पागलों की तरह एक दूसरे से गले मिलते हैं, चरणों में गिरते हैं। राम उठा के पूछते हैं, सब भैया ठीक तो हो भरत? भरत कहते हैं, नहीं, आप वापस चलो, ये आपका राज्य है, मैं राजा नहीं बनने वाला। राम कहते हो ही नहीं सकता, रामो द्वीर नभाषते, राम ने जो कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, दोबारा तो बदला नहीं जा सकता, तुम्हें ही बनना पड़ेगा। राम और भरत के बीच में बहस होता है, कह सकते हैं झगड़ा होता है, किस बात के लिए? जमीन के लिए, राज्य के लिए। पर ऐसा झगड़ा नहीं जैसे हमारे भाइयों के बीच में होता है। हम भाइयों में लड़ते हैं, भाई बहनों में लड़ते हैं, जमीन का टुकड़ा कब्जा करने के लिए, कौन मालिक बनेगा हमारे पैतृक संपत्ति पर। भरत और राम लड़ते हैं, मैं नहीं बनूंगा तुम बनो, तुम मैं नहीं बनूंगा तुम बनो, और हम लड़ते हैं, तुम नहीं मेरा अधिकार। समझा बुझा कर भरत को भेजते हैं। भरत खुद भी राजा नहीं बनते हैं, उनके खड़ाव मांग करके, खड़ाव रख के, खड़ाव को सिंहासन पर रखते, खुद कुटिया में राम की तरह रह करके राज्य चलाते हैं। ये भी समझने की जरूरत है दोस्तों, घर परिवार में कैसे रहा जाए। हमने एक कहानी सुनी थी, रियल स्टोरी। एक उपदेशक थे महात्मा रामचंद्र देहलवी जी, उनकी ये आप बीती घटना है। एक बार ट्रेन से कहीं जा रहे थे तो स्लीपर का कोच था, ऊपर की कोच में एक व्यक्ति सोए हुए बड़े सुंदर भाव से रामचरितमानस के दोहे गा रहा था, चौपाइयां गा रहा था। नीचे देहलवी जी विश्राम बैठे हुए थे, उनको मजा आ रहा था, सुन रहे थे। इलाहाबाद स्टेशन आने से पहले वो व्यक्ति ने अपने बैग वगैरह ठीक किया, नीचे उतरा। दहलवी जी ने पूछा कि आपको कहाँ उतरना है? बोले इलाहाबाद उतरना है। अच्छा, आप इलाहाबाद में रहते हैं? नहीं, कोई काम है? जी मैं रहता तो मेरठ में हूं, पर इलाहाबाद में हाईकोर्ट जाना है, आज मेरा तारीख है, डेट है केस का। बातचीत चली, पता चला कि केस किस बात की है। भाइयों में जमीन जायदाद को लेकर 15-16 साल से झगड़े चल रहे हैं और कोर्ट में केस है, तारीख पर तारीख आता रहता है, तो जाते हैं। देहलो जी मुस्कुरा कर पूछा, रामायण के दोहे तो बड़े अच्छे बोलते हो, काश जीवन में भी उतर जाता तो कोर्ट के चक्कर कम लगते। देवियों सज्जनों, राम का चरित्र जीवन में उतारने के लिए होता है। राम मित्र के रूप में भी मित्र धर्म को निभाते हैं सुग्रीव और विभीषण के साथ, शत्रु के रूप में भी वो मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं। लड़ाई में किसी भी तरह के अमर्यादित जो भी लड़ाई के रूल्स रेगुलेशंस उन दिनों हुआ करते थे उसी के दायरे में वो लड़ाई करते थे। रावण का को बाण लगने पर वो घायल हो चुका है, जमीन पर गिर चुका है, मरने वाला है। राम उसके पास जाते हैं, रेस्पेक्टफुली उससे बात करते हैं, क्योंकि रावण विद्वान था, ब्राह्मण, यज्ञ करने वाला, वेदों को जानने वाला, शास्त्रों को जानने वाला, पर बुरा चरित्र वाला। ऐसा ही होता है, बहुत सारे ज्ञानी होते हैं, किताबी ज्ञानी, रिचुअलिस्टिक हैं, पर चरित्र में कोई जानवरों से कम नहीं होते हैं। वैसे ही रावण था, चरित्र खराब था, पर उसके ज्ञान में कोई कमी नहीं थी। राम उसे ज्ञान लेते हैं, कुछ उपदेश करो, कुछ ज्ञान दो, तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, शास्त्रों को जानते हो। मरने के बाद विभीषण को बोलते हैं, इनका सत्कार पूरी विधि विधान के साथ होना चाहिए। विभीषण कहते हैं, ये शत्रु है, आप उसको इतना सम्मान क्यों देते हो? राम कहते हैं, शत्रु मरणांतम मरणांतः शत्रु। मुझे पूरा श्लोक याद नहीं है रामायण का, उसका भाव है, शत्रुता तब जीवन तक है, जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक शत्रुता है, मरने के बाद क्या शत्रुता है। देवियों सज्जनों, राम के चरित्र से, एक एक घटना से जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काफी स्कोप्स हैं। राजा के रूप में भी इन्होंने जो राज्य पालन किया, वो इसी जिसको महात्मा गांधी अपने जीवन भर वो आदर्श के रूप में देखते रहे, राम राज्य की स्थापना। वो राम राज्य जिसकी कल्पना महात्मा गांधी से लेकर अनेक राजा महाराजा करते रहे हैं, वो राम राज्य क्या था? जहां राजा प्रजा का सेवक है, प्रजा उसके लिए संतान की तरह है, प्रजाओं के राजा के रूप में उसका कर्तव्य राजाओं प्रजाओं का सेवा करना पहला है, और इसीलिए राम का यही नेचर के कारण कहा जाता है कि राम के राज्य इसीलिए प्रसिद्ध था, वहां कोई चोर नहीं, डाकू नहीं, बदमाश नहीं, कोई आत्महत्या नहीं करता था, कोई बुरा काम नहीं करता था, सब धार्मिक मतलब मोरल वर्चुअस लाइफ जीते थे, अच्छे व्यवहार के साथ जीते थे। क्यों? यथा राजा तथा प्रजा। राजा अगर चरित्र से शुद्ध हो तो प्रजा भी होगी, जहां राजा बेईमान हो प्रजाओं में भी बेईमानी आ जाती है। संस्कृत में एक बड़ा सुंदर काव्य है, उत्तर रामचरित, महाकवि भवभूति के द्वारा लिखित। भवभूति लिखते हैं राम के राजा के रूप में उनका कैरेक्टर, तो कहते हैं, स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। राम कहते हैं अगर मुझे प्रजा की आराधना, शब्द देखिए आराधना पूजा, प्रजा मेरे लिए देवता है, उनकी आराधना करना, उनको खुश रखने के लिए वो सारी क्रियाएं करना, यही आराधना होती है ना। पूजा का, आराधना का यही अर्थ है, किसी को खुश रखने के लिए जो कुछ भी आप करते हैं वो सारी क्रियाएं पूजा या आराधना के नाम से जानी जाती है। मैं अपनी प्रजाओं की आराधना के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं, जरूरत पड़े मेरा प्यार को मैं बलिदान चढ़ा सकता हूं, मैं अपनी दया का बलिदान चढ़ा सकता हूं, मैं अपनी मित्रता को छोड़ने को तैयार हूं, इवन मेरी पत्नी जो मेरे प्राण से भी प्रिया है, सबसे प्रियतमा है जानकी सीता, जरूरत पड़े प्रजा की आराधना के लिए मैं अपनी जानकी को भी छोड़ने को तैयार हूं। सज्जनों, महान लोगों का, राजाओं का, लीडरों के एक स्पेसिफिक क्वालिटीज होती है, कहते वज्रादपि कठोराणि मृदो निकुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को ही विज्ञातुमर्हति। जो महान लोग होते हैं, लीड करना जिनमें क्वालिटी है, जो जेन्युइन होते हैं, ऑनेस्ट लीडर्स होते हैं, उनमें बेसिकली दो क्वालिटीज दिखती हैं। वो पत्थर से भी कठोर दिल वाले होते हैं और फूलों की पंखुड़ियों से भी कोमल दिल वाले होते हैं। जहां जरूरत पड़े क्रिमिनल्स को, गलत लोगों को, बुरे लोगों को डील करने के लिए पत्थर से भी ज्यादा कठोर बन जाते हैं, अपनी कमिटमेंट्स को, अपने जो प्रॉमिस किया उसको फुलफिल करने के लिए वो पत्थर से भी कठोर बन जाते हैं, और आम लोगों की सेवा के लिए, गरीबों के लिए, दुखियों के लिए, नीडियों के लिए जहां जरूरत पड़े वो फूलों से भी कोमल हो जाते हैं। साधुओं के लिए, धार्मिक लोगों के लिए, सज्जनों के लिए, ईमानदारी से जीने वाले लोगों के लिए फूलों से कोमल बन जाते हैं। इसीलिए अच्छे लोगों का, महान लोगों का चरित्र समझना आम लोगों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि ये उनके लिए ये कंट्राडिक्टरी लगता है, ये कभी बहुत कठोर होता है, कभी कोमल होता है। ये दोनों गुण जिसके पास होता है वो एक अच्छे लीडर बनता है। राम का चरित्र भी राजा के रूप में पत्थर से भी कठोर और फूलों से भी कोमल की तरह होता है। मित्रों, श्री राम अपने जीवन में बचपन से लेकर अंतिम तक ईश्वर भक्ति को कभी ईश्वर भक्ति के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। जो भी एक गृहस्थी के लिए पांच महायज्ञों की हमारे यहां व्यवस्था की गई है, ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर की भक्ति, आराधना, उपासना, संध्या, प्रातः सुबह और शाम को करना, स्वाध्याय, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना, देव यज्ञ, अग्निहोत्र, होम यज्ञादि को प्रतिदिन दैनिक अग्निहोत्र करना, पितृ यज्ञ, माता पिता की सेवा करना, जीवित माता पिता की सेवा करना, उनका सम्मान करना, आदर करना, उनके साथ समय बिताना, अतिथि यज्ञ, घर में आए हुए भूखे प्यासे नीडी लोगों की सेवा करना, आदर करना, सत्कार करना, और अपने आसपास जो मनुष्य दुखी हैं, परेशान हैं, नीडी हैं, उनको हेल्प करना, रेस्पेक्ट करना, आदर करना, ये मनुष्य यज्ञ है या अतिथि यज्ञ। भूत यज्ञ, हमारे आसपास में जो पशु पक्षी प्राणी हैं, जो मनुष्य नहीं है पर प्राणी है, उनके प्रति स्नेह, दया, सम्मान भाव रखना, उनके लिए खाने पीने की सामान देना, उनको ना मरने देना, ना मारना, उनको भी अपने तरह ट्रीट करना, ये भूत यज्ञ या प्राणी यज्ञ। पांच यज्ञों को करने का विधान हमारे सभी धर्म शास्त्रों में कहा गया है। श्री राम का जीवन दिखें, जो युद्ध का मैदान हो, जंगल में रहते हो या राजभवन में रहते हो, प्रतिदिन सुबह और शाम संध्या करना, यज्ञ करना, ईश्वर भक्ति करना उनका चरित्र का हिस्सा था। परमास्तिक थे, अंदर से, ये आजकल के तरह ना ऊपर से सुपरफिशियल नहीं, अंदर से आस्तिकता से भरा हुआ, ईश्वर भक्ति से ओतप्रोत थे। ऐसे ईश्वर श्री राम हमारे जीवन के प्रेरक बने, प्रेरणा के स्रोत बने। हम वाल्मीकि रामायण पढ़ें, रिपीट करता हूं, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया रामायण पढ़ें, रामायण में राम के चरित्र को ठीक ठीक समझें, रिपीट करता हूं, ठीक ठीक समझ के अपने जीवन में उतारें, देखेंगे हमारा जीवन भी कितना ज्यादा दिव्य होता जाता है, कितना सुंदर हो जाता है, हमारे रिलेशनशिप में भी कितनी मिठास भर जाता है, हमारे अपने लाइफ में भी कितना मिठास होता है, और हम कैसे अपनी दिव्यता को भी जगा लेते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना, थैंक यू वेरी मच।